ओम शांति। मुरली चिंतन का टॉपिक इसलिए लिया गया है, आप अपने जीवन में भी बहुत सुकून मिलेगा आपको इस मुरली चिंतन से। हम प्रैक्टिकली करते हैं मुरली चिंतन। चिंतन से क्या होता है, आत्मा में बल बढ़ जाता है। इस बल से आत्मा हमेशा उमंग उत्साह से आगे बढ़ पाती है, नहीं तो उमंग उत्साह नहीं रहता ब्राह्मण जीवन में, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हम मुरली में विशेष प्रकार के तीन पॉइंट्स निकालते हैं। मेरा अनुभव है तीन प्रकार की। एक है बाबा ने क्या क्या स्मृति दिलाया, दूसरा है बाबा ने क्या क्या नशा दिलाया, और तीसरा है बाबा ने क्या क्या सम्मान दिया। ये स्मृति, नशा और सम्मान, ये तीनों से क्या होगा, हमारी धारणाएं श्रेष्ठ बनेंगे। धारणाएं जब श्रेष्ठ बनेंगे ना, तो कर्म भी बहुत श्रेष्ठ बनेगा, हम भी सुखी रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है, बहुत सुंदर स्मृति दिलाया कि बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। और कौन है आपका सबसे श्रेष्ठ भाग्य क्या है, आप भारतवासी हो। विश्व में जितने भी आत्माएं हैं, हमारा ब्राह्मण आत्माएं सेवार्थ गए हैं विदेश देश विदेशों में, लेकिन वो भी भारतवासी है। जो भी अपने तन से मन से धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं ना, वो सब भारतवासी है। भारत की महिमा किया बाबा ने, बाबा ने कहा यही भारत था 5000 वर्ष पहले, सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसे सुखधाम कहते थे, दुख था ही नहीं। तो वेद शास्त्रों में तो रावण है, ये है, वो बोल दिया असुर थे, लेकिन सुख था, सुखधाम था वो। 16 कला संपूर्ण थे आत्माएं, ये हमारी भारत की बहुत बड़ी महिमा। सोने की चिड़िया थी भारत, ये भारत की दूसरी महिमा क्या है, बहुत श्रेष्ठ महिमा है, स्वयं भगवान की क्या है, ये जन्म भूमि है, अवतरण भूमि है भारत। फिर स्वयं परमात्मा का अवतरण क्यों होता है भारत पे, राजयोग सिखाने। राजयोग में क्या होता है, योग और राजयोग दोनों में अंतर क्या है, एक होता है योग अर्थात देह सहित, देह के सभी संबंधों को भूलकर अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को दिल से और स्नेह से याद करना, इसे कहते हैं योग। और राजयोग क्या है फिर, राजयोग अर्थात परमात्मा भी राजा है, प्रकृति का मालिक है, संसार का मालिक है, उस मालिक से मिलना तो क्या करेंगे, हमको भी मालिक बनना पड़ेगा। एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति से मिलते हैं ना, साधारण व्यक्ति तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो हम कैसे करेंगे फिर राजयोग में, हम इस पंच तत्वों से बनी हुई शरीर का मालिक है, कर्मेंद्रियों की मालिक है, हम ब्रुकटी के सिंहासन पर बैठे हैं, राजमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा, राजा आत्मा हूं। फिर परमात्मा से मिलन मनाओ, एक राजा दूसरे राजा से मिलन मनाता है, इसे कहते हैं राजयोग। इसे क्या होता है, राजयोग से दो चीजें प्राप्त होती है। बाबा ने कहा आज कि बच्चे एक ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरा योग बल प्राप्त होता है। ज्ञान और योग बल, ये दोनों से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, माया रावण पर जीत पाते हैं। ज्ञान और योग बल नहीं है तो हम नंबर 1 दुश्मन जो माया रावण है ना, उस पर जीत नहीं पा पाएंगे। फिर वो नंबर 1 दुश्मन क्यों है रावण, कारण है उसने दुख धाम की स्थापना की है, दुर्गति कर दिया है आत्माओं की, बहुत दुख दिया है। फिर हम राजयोग सीखकर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। क्या करते फिर? तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनेंगे। कई बच्चों को यह संकल्प चलता है, अरे भाई हम विजयी होंगे नहीं होंगे, इतने सारे परिस्थितियां आएंगे, परिस्थितियों को पार करेंगे या नहीं करेंगे। संकल्प आता है ना, ब्राह्मण जीवन में भी भगवान साथे होते हुए भी बहुत सारे बातें आती है सामने। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर स्मृति दिलाई हमें। कौन सा स्मृति दिलाई? ड्रामा की। क्या दिलाई? कि बच्चे ये बेहद सृष्टि रूपी ड्रामा है, ये ड्रामा में हर सेकंड भाई सेकंड शूट होता जाता है। शूटिंग करते हैं, पास्ट मिटता जाता है, प्रेजेंट जो कर्म करते हैं वो शूटिंग होता जाता है, बढ़ता जाता है, सीडी में रिकॉर्डिंग होता जाता है। ये इस ड्रामा की विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? ये ड्रामा हूब ही रिपीट होता रहता है, और इस ड्रामा का आयुष्य है 5000 वर्ष, और इसमें हम 84 जन्म लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे नथिंग न्यू, जो कुछ भी हो रहा है ये 5 वर्ष के बाद भी होगा, 5000 वर्ष के बाद फिर वापस रिपीट होगा। अभी वर्तमान समय स्वयं भगवान तुम्हारे साथी है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये खेल हार जीत का तो है ही, लेकिन फाइनल जीत आपका होगा। हम 5000 वर्ष पहले भी जीत चुके थे, विजय रतन बने हैं, इस बार भी विजय रतन बनेंगे। सफलता आपकी जन्म सिद्ध अधिकार बनेगा। इसलिए निश्चिंत रहो बच्चे, नथिंग न्यू, आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे ही। कितना अच्छी बात है। फिर बाबा ने क्या कहा मुरली में कि बच्चे बाप कौन है? बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। फिर आपको बच्चों में क्या है? वही संस्कार आपके बच्चों में है। ज्ञान भी है तो पवित्रता भी है, सुख देने की भावनाएं भी है। इसी पवित्रता के शक्ति से हम सुख धाम की स्थापना करते हैं, है ना? इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र रहोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे, पवित्र दुनिया में आ जाओगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे हारता कौन है? जो व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं कर पाता। पवित्रता माना क्या है? आत्मा की पर्सनैलिटी है। जैसे शांति क्या है? आत्मा की स्वधर्म है ना, ऐसे पवित्रता आत्मा की पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी किसको कहते हैं? हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, विश्व सुंदरी का, विश्व सुंदर का प्रोग्राम देखते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं कि आपको बाल कितना होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, आंख कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, मुख कैसा होना चाहिए, शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब नोट करते हैं एक एक चीज। ऐसे ही पवित्रता भी हमारी पर्सनैलिटी है, हमारे संकल्प कैसा होना चाहिए, हमारा वृत्ति कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टि कैसा होना चाहिए, हमारी भावनाएं कैसे होना चाहिए, हमारे मुख कैसे खोलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए मुख से, हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां आगे बढ़ना है। बाबा सब ज्ञान दिया है। इसको कहते हैं पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं प्यूरिटी। जब प्यूरिटी धारण नहीं करते हैं, काम विकार में जाते हैं, तो क्या होता है? वो हार जाता है। हारने के बाद भी बाहर नहीं उठता, वो क्या होता है? 14 कला संपूर्ण बन जाता है। 16 कला में नहीं आता, वो त्रेतायुग में आ जाता है, प्रजा में भी प्रजा। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता को नहीं छोड़ो। इसी उपलक्ष्य में रक्षाबंधन भी मनाते हैं। भगवान अवतरित हुआ है इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। लोगों को पता नहीं है, हमें पता है ज्ञान। तो बाबा ने आगे कहा है कि बच्चे तुम भगवान को वारिस बनो, तन से भी हो चाहे मन से भी हो चाहे धन से भी हो, जैसे आप वारिस बनाओगे वैसा आपको भी वो वारिस बनाएगा 21 जन्मों के लिए। सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं, 84 जन्म बनाता रहता है। एक बार बाबा को पूछा, बाबा हमारे सबसे साधारण जन्म कौन सा होता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे जो 84 जन्म है ना, ये सबसे साधारण जन्म है। किसको, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दिया है, वो धीरे धीरे करके डाउन करते करते 10 लाख पे आ गया है, 10 लाख भी कम होता है क्या? लखपति बन गया है ना। ऐसे ही ये साधारण जन्म में हम इतने अच्छे हैं, तो पिछले जन्म में कितना अच्छे होंगे? क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हमने भगवान को वारिस बनाया है इस जन्म में किसी न किसी रूप से, और उसका रिटर्न प्रारब्ध के रूप में हमको मिलता है 84 जन्म। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे योग भट्टी में बैठे हो। योग भट्टी का मतलब क्या है? योग बल को प्राप्त करने वाली भट्टी, इससे आपकी संस्कार बहुत शुद्ध हो जाएंगे। दूसरा, आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और आप भगवान के मददगार बनोगे। जब भगवान के मददगार बनोगे तो क्या होता है, अपना भाग्य के हकदार बनोगे। बाबा ने कहा ना कि बच्चे भगवान का मददगार बनना स्वयं की मददगार बनना है, है ना। तो बाबा ने लास्ट को कहा कि बच्चे आप निमित्त बनकर कार्य करो, सारा बोझ परमात्मा को अर्पित करो, ट्रस्टी वो कर निभाओ, तो वो सब संभालेगा। हम मधुबन में रहते हैं, सेंटर में बहने रहते हैं, निमित्त बनकर रहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। एक सेंटर में एक जमीन लेना था तो सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन बहन जी ने बोला नहीं। क्यों? उनके पास 2 लाख रुपए है सिर्फ बैंक में, और जमीन कितना रेट है? 40 लाख का। फिर हमने कहा बहन जी बाबा को अर्पित करो, बाबा कुछ ना कुछ कराएगा। वो चांस नहीं मिलता था दोबारा, एकदम सेंटर पॉइंट पे 40 लाख में बेचने वाला था, 80 लाख का जमीन। उनको बीके से संबंध संपर्क में था, वो क्लियर कहा उसने। तो बेन जी ने बाबा पर क्या किया, अर्पित कर दिया बुद्धि को, 40 लाख आ गए। कौन दिलाया? भगवान को निमित्त बनाओ। हम एक एग्जांपल बताते हैं मधुबन में भी, मधुबन कैसे चलता है। डिपार्टमेंट हेड्स का मीटिंग चल रहा था, एक छोटा सा अनुभव सुना के बंद कर दूंगा। मीटिंग चल रहा था तब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे लिस्ट आए थे हमारे, बहुत सारे काम होता ना, हर एक डिपार्टमेंट वाले लिस्ट देते हैं हमको, ये चाहिए ये चाहिए उस मास में। अकाउंट वालों ने कहा भाई 4 मास का फाइल्स पेंडिंग है। फाइल में बिल में अंतर क्या होता है? एक फाइल में 20-20, 40-40 ऐसा बिल्स होते हैं, उसको फाइल बोलते हैं। ऐसा 4 फाइल पेंडिंग है, करोड़ों रुपए होता है, एक दो रुपए नहीं होता, एक एक बिल 10 लाख 20 लाख का होता है, हम लोग 5 लाख 4 लाख। फिर उन्होंने बोला भाई ये पेंडिंग रखो, वो बहुत जरूरत था। तो हम लोगों ने सोचा क्या करें, फिर हमने बाबा को बहुत दिल से याद किया, बाबा ये चीजें बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होता, क्या करें। मैं बाबा को शांतिवन में याद किया, बहुत दिल से बाबा रूम में बैठा, 2 मिनट याद किया, ऊपर आ गया। ऊपर आते ही काल आ गए, एक वो सोच भी नहीं सकते उस व्यक्ति के बारे में। हम काल आके बोलते हैं कि रामू भाई ओमचंद जी कैसे हो आप, याद आ रहे थे हम 1 घंटे से। बोला क्या बात है माता जी? तो उन्होंने कहा कि कैसे सब ठीक चल रहा है, मधुबन में कुछ जरूरत हो तो बता देना। मैं बोला आप क्या कर सकते हो? मैं जो आप बोलोगे वो कर सकते हैं। हमने कहा इतना सारे आइटम है, आप मुंह खोल के बोलो इतना चाहिए इतना भेज दूंगी। मैंने सारे जगह में फोन किया डिपार्टमेंट हेड्स को, भाई हमारा काम पूरा हो गया 3 दिन में आ गया। कौन करता है? सिर्फ हम अपने दिल से बाबा को बताओ, बाबा हर चीज आपका पूरा करता है, बाबा ने प्रॉमिस किया है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरा संगम युग तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सारी भुजाएं हमें दे दो। करण करावनहार मैं हूं, सिर्फ तुम निमित्त हो। फिर सूरज भाई ने, निर्मा दीदी ने उनको थैंक्स दिया जिसने भी भेजा। काम पूरा हो गया। हमारा एक दिन का काम नहीं है, सारा साल का ही झंझट होता है। रोज लिस्ट आता है, रोज लिस्ट, लिस्ट में लाखों में होता है और बाबा कराता रहता है। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने आया हूं, इच्छाओं को नहीं। ये ध्यान रखना, इच्छाएं पूरा करोगे ना तो आप कलयुग में रह जाओगे, इच्छाओं का अंत नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, हमें 3 लाख की जरूरत थी, सिर्फ 3 लाख ही आया। बाद में सोचा यार और कुछ सामान लेना था और 20 बोलना था, उनको नहीं आएगा, उतना ही आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इतना ही ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ो। मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, हमको अगर 50,000 की जरूरत है 50,000 ही आएगा, 500-600 ऊपर नीचे आएगा। ये सब कौन कराता है? एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 30 साल का अनुभव है। मैं 30 साल से किचन को निमित्त होकर संभालता हूं, 30 साल का यही अनुभव है। हमें यही सिखाया जाता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, बाबा को याद करो, सब अपने आप ही बोलेंगे लोग ऐसा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ट्रस्टी होके अपने आप को रखो, भगवान को निमित्त बनाओ, सारा कार्य पूरा हो जाएगा, है ना? ओके, ओम शांति।